नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज आयोजित करेंगी। रूसी राष्ट्रपति का आज सवेरे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन की अगवानी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों में प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगी।
संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर भारत और रूस एक दूसरे का घनिष्ठ सहयोग करते आए हैं। रूस लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस की यात्राओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम दिया है और अब दोनों देश पारंपरिक सहयोग वाले क्षेत्रों जैसे सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर प्रयासरत हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने मित्र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत रूस की मैत्री समय की कसौटी पर खरी उतरी है और इससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। इस बीच रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के अप्रत्याशित कदम की सराहना की है। संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सिगरेट पर बढ़े हुए शुल्क से होने वाली आय राज्यों के साथ साझा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये उपकर नहीं बल्कि उत्पाद शुल्क है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO पर कार्यभार कम करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों को उनके काम के घंटों को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती पर विचार करने का निर्देश दिया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में संपर्क बहाल करने के लिए 65 टन का एक बेली ब्रिज अर्थात पूर्व निर्मित पुल श्रीलंका के कोलंबो पहुंचाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि MI-17V5 हेलीकॉप्टरों से 6 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है और 24 लोगों की जान बचाई गई है। भारतीय सशस्त्र बल श्रीलंका के लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने संगठित अवैध हथियार मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA की 22 टीमों ने 3 राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। इसमें बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बारूद, 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, आपत्तिजनक डेटा युक्त कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा नकली और संदिग्ध पहचान पत्र सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इंडिगो एयरलाइनों के उड़ान व्यवधानों पर नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और इंडिगो के शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए। इंडिगो एयरलाइंस की प्रतिदिन लगभग 170 से 200 उड़ानें रद्द हो रही हैं, जो सामान्य से बहुत अधिक हैं। बैठक में श्री नायडू ने स्थिति से निपटने के तरीकों पर एयरलाइनों की आलोचना की। उन्होंने एयरलाइनों को तत्काल परिचालन सामान्य करने और हवाई किराए की बढ़ोतरी में नियंत्रण का निर्देश दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।